आयत नंबर 5 से जो टॉपिक शुरू हुआ था कि वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़्वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फौलाइक हुमुल आदून। ये सारी आयतें एक ख़ास टर्म जिसको निकाह मुता कहते हैं इसका रद्द भी पेश करती हैं। मुता कहते हैं वक्ती तौर पर औरत से फ़ायदा उठाना। एक ऐसा स्कूल ऑफ थाट है जो कहते हैं कि निकाह मुता जायज़ है। मसलन आप किसी मुल्क में गए हैं, आपको 3 माह वहाँ रहना है, तो आप किसी औरत से वहाँ शादी करें और साथ ही उसमें ये लिख लें कि बस 3 महीने के लिए ये शादी है। इसको मुता कहते हैं, फ़ायदा उठाना। और इस नाम पे बहुत जिना की मारूफ शक्लें आज के दौर में मिलती हैं, तो ये आयत उसका भी निगेशन पेश करती है कि नहीं, बीवी और लौंडी, उसके अलावा कोई और तरीका उसमें नहीं। क्योंकि हम पीछे ये बात तफसील से देख चुके हैं कि शादी की शरायत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसमें वक्त का तय्युन ना हो, बल्कि शादी क्या होती है, बसाने के लिए होती है, ना कि घर बिगाड़ने के लिए। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे आयत नंबर 12 से। पिछली आयत में इंसान की फलाह का तस्करा था कि कैसे दुनिया और आखरत में वो कामयाब हो सकता है। अब इंसान को बताया गया कि तुम देखो कि तुम हो क्या, अल्लाह ताला ने तुम्हें किन मराहल से उठाया है। 7 मराहल जो इंसान की तख्लीक में पेश आए वो इन आयात में हम देखेंगे। फरमाया वलकत खलकनल इंसान मिन सुलालते मिन तीन, और बेशक हमने पैदा किया इंसान को मट्टी के जौहर से। यहाँ तख्लीक का तस्करा है। पहली बात, हमने पैदा किया इंसान के लिए खुश होने का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश को अपनी तरफ लिया, नस्बत दी। दूसरी बात है सुलाला। अल इंसान जो है ना, ये इसम जिन्स है। बास कहते हैं कि यहाँ आदम, लेकिन आदम के साथ सारे ही लोग हैं, मर्द औरत सब के लिए। और हकीकत है कि आदम को भी अल्लाह ने पैदा किया और इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। किससे पैदा किया? सुलाला। सुलाला का लफ्ज़ थोड़ा सा तवज्जो तलब है। सीम लाम, लाम इसका रूट है। सल्ला यसुल्लु। सुलाला कहते हैं खुलासे को, निचोड़, जो किसी का एंड प्रोडक्ट होता है। उर्दू में हम बोलते हैं ना सत, उसका सत निकाला। तो किसी चीज़ से निकाली हुई चीज़, इशारा है इसमें इंसान के पैदाइश के लिए जो मादा ज़रूरी होता है उसकी तरफ। कहाँ से निकाला? मिन तीन, मट्टी से। तीन कहते हैं गीली मट्टी को, जैसे मड के मानों में। फिर क्या हुआ? सुम्मा जअलनाहु नुतफतम फी करारिम मकीन, फिर हमने बना दिया उसको पानी की एक बूंद एक महफूज मकाम में। यानी सुलाला से मुराद है औरत और मर्द के जिस्म से आने वाला पानी, और नुतफा से मुराद है ज़ाइगोट, जो दोनों के मिलाप की सूरत में माँ के रहम में आता है, और करार मकीन से मुराद है यूट्रस, मदर्स वोम। फिर क्या हुआ? आप ज़रा अपने जहन में सारे मराहल ले आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ये तो कहने पे यकीनन तैयार होंगे कि ये कुरान भी अल्लाह का कलाम है, जिसने आज से 1400 साल पहले, जब कोई एम्ब्रियोलॉजी का वजूद भी नहीं था, उस वक्त वो सारी बातें बताई जो आज साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं। हुआ क्या? माँ के पेट में पहले मतलब सुलाला गया, फिर नुतफा बना, फिर यूट्रस में जमा दिया गया। इससे भी आपको पता चल रहा है कि मकीन महफूज जगह होती है। बच्चा सिर्फ एक आंत के साथ माँ के साथ चिपका होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कितना महफूज रखा कि माँ चलती फिरती उठती बैठती, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। यहाँ छोटी सी एक बात कर लें ताकि हमें दोहराना ना पड़े, कि यहाँ ये जो कहा गया कि इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया गया, तो मट्टी कहाँ होती है हमारी तख्लीक में? चले ये तो हम समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए गए थे, बनाए थे, तो फिर इंसान की तख्लीक में मट्टी कहाँ है? तो इसका जवाब यह है कि वो खुराक जो इंसान खाता है, जिससे फिर बिलाखिर वो मादा पैदा होता है, जिससे बच्चे की तख्लीक होती है, तो वो खाना पीना वो सब चीज़ें भी तो मट्टी से आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में मट्टी बराह रास्त शामिल थी, और अब हम इंसानों की तख्लीक में मट्टी इनडायरेक्टली शामिल है। सुम्मा जालनान खुनुतफतम फी करार मकीन, फिर हमने उसको पानी की एक बूंद बनाकर एक महफूज मुकाम में रखा। सुम्मा खलकनन नुतफता अलका, फिर हमने बना दिया नुतफे को खून का लोथड़ा। ये है इंसान की तख्लीक में से तीसरा मरहला। पहला दौर हमने देखा सुलाला तो मिन तीन, दूसरा था नुतफा, तीसरा है अलका, जमा हुआ खून, पीछे हम इस पे बात कर चुके हैं। मुअल्लक अलका चिपकी हुई चीज को कहते हैं। ये वो कैफियत होती है कि जब वाकई बच्चा माँ के पेट में जाके एक ख़ास जगह पे चिपक जाता है जोंक की तरह। फिर उसका अगला मरहला फ़लक नल अलकत मुदगा, फिर हमने बना दिया इस लोथड़े को गोश्त की बोटी। च्यूट शक्ल में पिछली सूरत में इस पे बात हुई थी कि बच्चे की अगली कैफियत क्या है, वो मुदगा बन जाता है एक बोटी की सूरत में। फिर इज़ामन, फिर हम उससे हड्डियाँ बनाते हैं। فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं। ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, फिर हم इसमें रूप फूक कर इसको एक दूसरी मखलूक बना देते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले कैफियत थी सुलाला की, जो मिट्टी से हासिल हुआ। फिर उसके बाद नुतफा बना, फिर अलका बना, फिर मुदगा, पांचवें दर्जे में एजाम हड्डियाँ बनी, छठे दौर में हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, और सातवां दौर है तख्लीक का के जिसमें रूह फूकी गई। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पस बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। ये है इंसान के इस दुनिया में आने की मुख्तलिफ कैफियत, जिसमें से एक खूबसूरत इंसान भी गुजरता है और बज़ाहर कम शक्ल वाला भी गुजरता है। गोरा काला अमीर गरीब, हर बच्चा इन सारी कैफियात से निकलता है। हमें इसमें क्या सिखाया? नंबर एक, तदरीज, ग्रेजुअलिटी, सब्र करो, एक ही दम तुम्हें बच्चा नहीं मिल सकता। यही सारे मराहल पीछे फलाह की सूरत में भी हमने देखे थे कि कामयाबी चाहते हो तो सब्र करो, इंतज़ार करो, एक कैफियत से दूसरी कैफियत में ढलो। यहाँ हमने देखा कि एक कैफियत के बाद पहले कुछ जगह सुम्मा का लफ्ज़ आता है, आप देखेंगे एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बच्चे के जाने में लफ्ज़ सुम्मा आया है। सुम्मा क्या होता है? थोड़े अरसे के बाद। फ़ा का लफ्ज़ आए, पीछे बात इस पर बहुत दफ़ा हुई है, फ़ा का लफ्ज़ होता है फ़ौरन, फ़ा से फ़ौरन याद रख लें, और सुम्मा से ताखीर याद रख लें। यानी बच्चा एक कैफियत में कुछ दिन रहता है, और सही हदीस में हमें मिलता है कि 40-40 दिन का फ़र्क होता है बच्चे की एक कैफियत से दूसरी कैफियत में बदलने के लिए। अल्लाह की ज़ात इन सारी चीज़ों को सामने रख कर बयान करते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ये सारी कैफियत पेश करता है, और उसके बाद बच्चा दुनिया में आता है। ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ, फिर इसके बाद यकीनन तुम मर जाओगे, तुम मरने वाले हो। ये तुम्हारी दूसरी कैफियत है। पहली क्या थी कि माँ के पेट में इतने मरहले गुजरे। ये जो बात है ना कि तुम्हें हमने एक दूसरी तख्लीक पैदा की, इसके बारे में आप नोट कर लें कि ये है वो मरहला जब बच्चे के जिस्म में रूह फूकती है। सारे मरहले पूरे हो जाएं लेकिन रूह ना फूकें तो बच्चा मुर्दा पैदा हो जाता है। पहले अल्लाह जिस्मानी तौर पे बच्चे को पूरा करता है, फिर उसके अंदर रूह डाल के उसको एक ज़िंदा इंसान की सूरत में पेश करता है, और इसी से फिर अल्लाह ताला वादा भी लेते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, जो पीछे बात हो गई, और इसके बाद फिर मरना है। ये है इंसान की ज़िंदगी की कहानी जिसमें इंसान से थोड़ा सा सब्र नहीं होता। आप देखिए कि फलाह तक पहुंचने के रास्ते में जितने भी मरहले आते हैं ना, वो सारे के सारे गुजर ही जाते हैं ना। जैसे बच्चा माँ के पेट में एक मरहले में जमा थोड़ी रहता है। जब प्रेगनेंसी का पता चले इंसान को तो लगता है कि बहुत ही बड़ा वक्त अभी रहता है, लेकिन आप पूछें कौन से बच्चे होते हैं तो उनको वो वक्त गुजरता हुआ पता भी नहीं चलता, कहते हैं अच्छा कल तो पता चला था, बच्चा भी हो गया। तो इससे पता चलता है कि तुम इस दुनिया में बैठे नहीं रहोगे। लतर कबुन न तबकन अन तबक, जिस तरह माँ के पेट में मरहले आए ना, इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएंगे। कल बचपन था, तुम बेबी थे, फिर तुम थोड़े से चाइल्ड बन गए, फिर उसके बाद तुम थोड़े से लड़कपन की सूरत में बन गए, फिर यंग हो गए, फिर बूढ़े हुए। तो बताओ जो ज़ात माँ के पेट में इतनी तब्दीलियाँ करती है, क्या बाहर आके वो नहीं करेगी? कौन सी डाई है जो माँ के पेट में रखी होती है जिससे नाक बनता है, आँखें बनती हैं? इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देख के रब को नहीं पाते? हड्डियाँ कहाँ से आ जाती हैं? गोश्त कैसे चढ़ता है? कौन असेंबल करता है? आप एक टेबल ले आए, घर आके खुद जोड़नी पड़े तो समझ आ जाती है कि कितना मुश्किल काम है। बच्चे का जिस्म अगर हमें असेंबल करना पड़ता, आपको पता है कि आज के दौर में जो फर्नीचर होता है उसको शिपिंग कम करने के लिए खुला भेजते हैं ना, क्योंकि वो फिर इतनी बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे कि लेगा कौन? बच्चा माँ के पेट से जैसे आता है, मुश्किल चीज़ है ना। तो अगर अल्लाह ताला आसान कर देते, माँ के लिए पहले टांगे आ जाती बाहर, फिर पाँव आ जाते, हाथ आते, फिर कहते बैठ के जोड़ लो, किसी की भी टांगे सीधी ना होती हम में से। वही बच्चा सही दुनिया में आ जाए तो बड़ी गनीमत है, हम उसी के लिए नहीं तैयारी कर सकते तो कौन जात है जो अंदर बैठ के जोड़ रही है। कितनी तंग जगहों पे ये सब कुछ हो रहा है, तीन अंधेरों में ये सब कुछ हो रहा है, इतने खूबसूरत इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब कौन कर रहा है। फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आ गई है मिसाल इस्म तफदील की, सबसे ज्यादा प्यारा सबसे प्यारा रब मेरा है जो इतने प्यारे प्यारे काम करता है कि जब बच्चा आता है तो कैसी प्यारी तस्वीर बनती है। फिर अंदर चले हम कोई तस्वीर बना लें, बाहर से बड़ी खूबसूरत होगी, अंदर भूसी भरी होगी गुड़िया के अंदर। बच्चा आता है बाहर से अंदर से, एक एक रग को आप उसकी छू के देखें, तुम्हें किसने बनाया, क्या ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर याद रखो कि तुम इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। मक्का में घर घर ये मुखालफत थी कि कोई नहीं मरने के बाद जिएगा, कहा नहीं, सुम्मा कुछ अरसा रुको फिर तुम जरूर उठाए जाओगे। मा तयमीतु से लमय्यितून और बासा यब असु से तुबअसून, कि तुम्हें इसके बाद उठना है। क्या सोचते हो कि मरने के बाद हिसाब नहीं होगा? यकीनन होगा। ना तुम जिंदगी खुद ला सकते हो ना मौत ला सकते हो खुद, तो क्या क्यों अल्लाह के दिए हुए जिस्म के ऊपर गुनाहों का बोझ चढ़ा के उसको नाफरमानियों में खपाते हो? कभी गौर करो, हम सब कभी गौर करें ना, तो अपने ऊपर गौर करने से ही बंदे को रब मिल जाता है। एक रिवायत का खुलासा है कि मन अरफा नफसहु अरफा रब्बा, जिसने अपने आप को पा लिया वो अपने रब को पा लेगा। harunjahia.com पे जाएं तो प्रेजेंटेशंस में आप क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग देखें तो उसमें भी आपको कई चीज़ें मिल सकती हैं। हमारा ईमान है जो अल्लाह ने बता दिया वो सच है, लेकिन वाकई साइंस की नज़र से इन चीज़ों को देखने से यकीन हो जाता है कि जिस रब ने ये कुरान बनाया उसी ने इंसान को अक्ल दी और वो सब कुछ करने वाला है। अब इसके बाद कायनात पे गौर है कि पहले इंसान अपने ऊपर गौर करे, अल्लाह का कुर्ब पाए और उसके बाद कायनात को देखे। हम कहते हैं कुरान पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत आती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, गौर व फिक्र से भी तुम्हें मेरी मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि तुम बेसाख्ता बोल पड़ोगे कि अल्लाह से ज़्यादा और कोई नहीं है जो ये सारे काम कर सके। और इतने सजे हुए तरीके से तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, तुम्हें भी खूबसूरत बना के भेजा, ऐसे लगता है कि जैसे एक नई दुल्हन आती है तो वो भी हर चीज़ में अपने आप को सजा संवार के लाती है और आगे आई तो घर भी खूबसूरत है। इसी तरह आप देखिए कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो आगे कितनी हसीन दुनिया उसका इस्तकबाल कर रही होती है। अब इसको इमेजिन करिए, वलकद खलकना फौकाकुम सब अतराइक, और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते बना दिए। सब अ सेवन, सात, तराइक तरीक़ा की जमा है, तुरुक कहते हैं रास्ते को, यहाँ इससे मुराद है आसमान। अरब लोग ऊपर नीचे रखी हुई चीज़ को तरीक़ा कहते थे, ये हम जो कहते हैं ना ये मेरा तरीक़ा तुम्हारा तरीक़ा, वो भी लफ्ज़ इसी से ही है, क्योंकि हम उसको भी एक किस्म के तरह फॉलो करने लगते हैं ना रास्ते की तरह से। अब इससे मुराद क्या है? सवा तराइक, नंबर एक रास्ते, बाज़ कहते हैं मलाइका के आने और जाने के रास्ते यहाँ मुराद हैं जिससे वो कायनात का निज़ाम चलाने के लिए गुजरते हैं। दूसरा ये है कि सितारों की गुजरगाहों के रास्ते मुराद हैं, ये जो हमें सितारों की गर्दिश दिखती है वो इससे मुराद है। और तीसरा इससे मुराद है सात आसमान, सेवन हेवंस का नज़रिया जाम है, सेवन लेयर्स हैं। और हदीस में आता है कि हर आसमान दूसरे आसमान पर इस तरह जैसे प्याज के परत, एक परत उतारते हैं तो दूसरा, और अब देखिए प्याज भी गोल है तो आप अगर खोल के देखें तो कायनात खुद ब खुद एक पूरे गोल चीज़ को साबित करती है ना। लेकिन अहदीस में आता है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में 500 साल का फासला है, उसी के अंदर तो फिर फरिश्ते हैं, और हर आसमान के जिम्मे काम भी अलग है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, कभी गौर करें ना तो वाकई अकल दंग रह जाती है बंदे की कि ये हमें सोचना भी नहीं पड़ता और सारे काम हो रहे हैं। अगर हमें ये कहा जाता कि आसमानों को काम बांटो, पता नहीं क्या कर रहे होते, सब चौपट होता। हमसे तो एक कमरे का घर नहीं संभलता है, चार लोग नहीं हमसे संभलते, तो बात सोचिए कि ज़मीनों आसमान को हम कैसे संभालेंगे। कवमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिलीन, और हम अपनी मखलूक की मसलहतों से उसकी ज़रूरियात से बेखबर थोड़ी हैं, हमें पता है हमारे बंदों को क्या चाहिए। ऐसे लगता है जैसे घर का मर्द कहे कि मुझे पता है घर की क्या ज़रूरियात है, मैं ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। अल्लाह कहते हैं ऐसा थोड़ी है, अधूरी दुनिया में तुम्हें भेज दें, तुम्हें भेज दिया पता चला कि तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं हैं, कपड़े हैं तो खाना नहीं है, खाने हैं तो कपड़ा नहीं। क्या पता चला कि जो बच्चा दुनिया में आता है अपना नसीब लेकर आता है। मत कहें कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते, अल्लाह ने पैदा किया, अब छोड़ थोड़ी दिया। उसकी नशोनुमा, उसके रहने सहने, उसकी शादी मंगनी खाना पीना सब उसको खूब पता है। अल्लाह यालमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया। सूरत मुल्क में आता है, इसी तरह आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको तो इन दोनों की हिफाजत थकाती नहीं है। कुल्ला यौमिन हुवा फीशान, वो तो हर दिन नए कामों में लगा हुआ है, किसी को मार रहा है तो किसी को जिंदा कर रहा है, तो किसी की शादी है तो किसी का कोई और मामला है। अल्लाह ताला कहते हैं हम गाफिल नहीं हैं। मत सोचो, एक तो ये मानिए ना कि अल्लाह इस कायनात की देखभाल से गाफिल नहीं, एक और मफहूम भी नोट कीजिएगा, और वो क्या कि ये मत सोचो कि अल्लाह तुमसे पूछेगा नहीं, हिसाब लेगा वो पूरे, क्योंकि उसको हर चीज़ की खबर है। वंजलना मिनस्समा इमाअन, और हमने उतारा आसमान से पानी बारिश का, कैसे भी कदर इन, अंदाज़ों के मुताबिक, ये नहीं कि खोल दिया जितना करना कर दिया, एक ही जगह टूटी खुली भूली के बंद करनी, सारा इलाका डूब गया, नहीं। फिर सैलाब क्यों आते हैं? ये अल्लाह की हिकमत से आते हैं, अल्लाह को पता होता है यहाँ लाना है। फिर इसी तरह भी कदर का मतलब है कि जितना पानी उड़ जाता है भाप बन के समंदरों से, उतना ही पानी बारिशों की सूरत में फिर ज़मीन पर आ जाता है। फस कन्ना हुफिल अर्द, फिर हमने इसको ठहरा लिया ज़मीन में। ये अल्लाह के इनामात बयान हो रहे हैं, इंसान की तख्लीक के बाद कायनात पे गौर व फिक्र करवाया जा रहा है कि देखो तुम्हारी रब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कितना कुछ सजा के बैठा हुआ है, उसने तुम्हारी सारी ज़रूरियात को पूरा किया, और अब तुम्हारे लिए बारिश बरसा रहा है, तुम्हारी खेतियाँ सैराब होंगी, पीने के लिए पानी तुम्हारे तालाबों में जमा होता है। सारा पानी अगर इकट्ठा यूज़ हो जाए तो फिर बाद में कहाँ से लेंगे? इसलिए अल्लाह ताला ने कैसे प्यारे ट्यूबवेल्स और कैसी चीज़ें, आप देखिए कि आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि पानी का ज़खीरा मौजूद है, तभी तो कायनात का निज़ाम चल रहा है। लेकिन याद रखो, व इन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, और यकीनन हम इसे बिल्कुल नापैद करने पर पूरी तरह कादिर हैं। कि ज़मीन सारा पानी नीचे खींच ले, कौन लाएगा? सूरह मुल्क की आखिरी आयत में भी तो कहा, कुल अरअईतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन, कह दीजिए कि अगर हम तुम्हारे पानी को खुश कर दें तो कौन है जो तुम्हारे लिए जारी पानी लेकर आए? कह दें कि अल्लाह तू ही लाएगा। वंशअना लकुम बिही जन्नतिम मिन नखील, फिर हमने उगाए तुम्हारे लिए इस पानी से बागात खजूरों के, व अनाबिन और अंगूरों के, लकुम फीहा फवाकिहू कसीरतुम व मिन्हा ताकुलून, तुम्हारे लिए इनमें बहुत से फल हैं और इनमें से तुम खाते भी तो हो। अब अल्लाह ताला एक और नेमत, अंगूरों और खजूरों के बागात, पहले पीने की बात फिर खाने की, क्योंकि इंसान को प्यास लगी हो तो खाने को भी दिल नहीं चाहता, इसीलिए कहा कि अब पानी मिल गया है तो आओ अब तुम खाने की बात करो। फाकिहा जो है ये फवाकिहा तुन की जमा है। नखील और अनाब अरब में बकसरत है, इसीलिए इनका जिक्र मिलता है। इसका ये नहीं मतलब कि ये इस्लामी फल है। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं खजूर ये इस्लामी फल है, अच्छा जैतून खाओ ये इस्लामी फल है, तो केला गैर इस्लामी है, फिर स्ट्रॉबेरी तो बिल्कुल ही गैर इस्लामी होनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलती है। ऐसा नहीं है, सब इस्लामी होता है। एक जगह कहीं थी तो कोई जैतून खाने पे कोई मजबूर कर रहा था, ठीक है उसकी इफादियत है बहुत है, लेकिन बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जो दीन का काम करता है उसको जैतून ज़रूर खाना चाहिए। कोई कहना मैंने नहीं खाना, कहते हाय सवाब का काम है, मुझे तो नहीं पता जैतून खाने से सवाब होता है कि नहीं, मुझे ये पता है केला खाने से भी सवाब होता है, अमरूद खाने से भी होता है, अंगूर खाने से भी होता है। तो अल्लाह ने इतना कुछ पैदा किया, चूँकि उन इलाकों में ये फल थे अल्लाह ताला उसका तذکرہ कर देते थे, और तूर की वादी में जैतून ज़्यादा पैदा होता था और वहाँ की ख़ास चीज़ थी, तो इसलिए आगे उसका भी अब तذکرہ आ रहा है। फरमाया वशा जरतन तखरुजु मिन तूरी सीना, और पैदा किया एक दरख्त जो उगता है तूरे सेना में। ये तूरे सेना क्या जगह है? वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया, और वहाँ बहुत जैतून उगता है। तंबुतु बिद्दुहन, वो उगता है तेल लिए हुए। तंबूतु जो है ये नबता से है, इसी से लफ्ज़ नबातात है उर्दू में जो हम बोलते हैं। और दुहन कहते हैं चिकनाई को, फैट। मक्खन, बटर, तेल का जिक्र है कि ऑयल जो उसमें से निकलता है। और इसमें क्या है, वस्सिबग़ लिल आकिलीन, और सालन लिए हुए है खाने वालों के लिए। सिब का लफ्ज़ कहीं पढ़ा पहले? सिबगत अल्लाही वमन अहसनु। कौन सा रंग होता है सिबगा? जो चढ़ाया जाए, अल्लाह की बंदगी का रंग चढ़ाना पड़ता है। लोन होता है कुदरती रंग, मा लोनुहा। अच्छा, अब यहाँ सिब का लफ्ज़ आया ना, तो सिब का लफ्ज़ी माना होता है सबगा, सिबग, सिबगुन, रंगना, डाई करना। यहाँ सालन के लिए क्यों आया? क्योंकि जब सालन में रोटी डबोते हैं तो वो रंगी जाती है, और ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तानी खाना हो, दाग ही नहीं जाता, हल्दी का दाग शायद ही कम ही जाता होगा। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो मैंने इस सालन के तौर पे इस्तेमाल किया। आपको पता है कि हम तो सालन में डालते हैं ना ऑलिव ऑयल, अरब लोग उसको एज अ सालन खाते हैं। कभी आप किसी अरब रेस्टोरेंट में जाएं तो इतनी कटोरियों में आपको ऑयल देंगे, तो वो डिप करके उसमें ब्रेड खाते हैं। इसकी तरफ इशारा है कि चिकनाई भी है उसमें और तुम्हारे लिए सालन का सालन भी है। और आपको पता है कि सहाबा कराम बाद बस सिर्फ अगर ऑलिव ऑयल उनके आगे होता था तो वो दूसरा सालन नहीं रखते थे, कहते थे कि तुमने इस वक्त में दो सालन जमा किए हुए। हमारी दावतें देख लें तो पता नहीं क्या हालात हो जाए उनके। अलाकिलीन आकिल की जमा। और आज भी आपको पता है कि जो ऑलिव्स के दरख्त हैं वो स्पेन में बहुत सारे हैं, मुझे खुद भी इत्तेफाक हुआ। इतना सब्जा है कि आप जब गुजरते हैं रास्तों में तो आपको जिस तरह हमारे मुल्कों में कौन सा फल आम दिखता होगा मसलन दरख्तों पे लगा हुआ, आम तो कम ही होते हैं, बेर कह लें, माल्टे कह लें। पूरे रास्ते में हमने एक सिटी से दूसरे सिटी बाय रोड ट्रेवल किया था, इतने खूबसूरत दरख्त हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं सुर्ख रंग के, कहीं सब्ज़ रंग के ऑलिव्स लगे हुए हैं, बल्कि 2000 साल पुराने तक दरख्त मौजूद हैं। माउंट्स ऑफ ऑलिव्स जगह है उस पर। इसी तरह आप देखिए कि इसका दरख्त जो होता है ऑलिव का, तकरीबन 50 फुट लंबा होता है, 50 मीटर टॉल होता है, और 30 फुट चौड़ा तक भी होता है। 500 साल इसकी एवरेज उम्र है। अल्लाह अकबर। 2 से 3 साल के बाद नए पत्ते उगाते हैं, जैसे बुढ़ापे में फिर नए बाल और नए दांत आने लगते हैं। जड़ों से दोबारा भी उगने लगता है कटने के बाद, इसलिए इसको बाबरकत कहा गया। इस पर सूरह नूर की आयत 35 में भी थोड़ी सी बात होगी। फिर मुख्तलिफ साइज और रंग होते हैं, यहाँ ख़ास तौर पे जैतून के तेल का जिक्र है। इसकी खूबियाँ पढ़नी है तो आप सिर्फ गूगल में डाल के ऑलिव ऑयल डाल दें तो आपको क्या कुछ दिखेगा, एक्स्ट्रा वर्जन, कम वर्जन, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, पूरी की पूरी सब्जी है, इसको पी भी सकते हैं। फिर पेट की बीमारियाँ, अल्सर वगैरह, उसका इलाज है, शुगर लेवल को कम करता है। इस पूरे का पूरे इसमें एक इंसानी नशो नुमा के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मौजूद हैं। फिर आखिरी चीज़ इस सबक की, वइन्ना लकुम फिल अनामी, और तुम्हारे लिए जानवरों में भी क्या है, ला इबरा, इबरत, गौर व फिक्र का मुकाम। अबरा इसी से लफ्ज़ है ना उबूर करना, फलाने पुल पार कर लिया, उबूर किया। तो इबरत भी क्या होती है कि किसी के हालात से नसीहत लेना। का आप जानवरों को देखो, कितनी दफ़ा पहले जिक्र गुजर गया जानवरों का, लगता है ना कि रब का कलाम है, उसी के जानवर हैं। कहीं मक्खियों का जिक्र, कहीं शहद की मक्खी का जिक्र, कहीं गाय भैंस का जिक्र, का ज़रा इस पे भी तो गौर कर लो, कैसे अल्लाह ताला ने अंदर इबरत रखी। क्या है इबरत का मुकाम? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम पिलाते हैं तुम्हें इस दूध से जो इनके पेटों में है। बतून क्यों आया? बतन की जमा है ना, कितने पेट होते हैं गाय के? भूल गए आप, आपको बताया था पीछे, 4 पेट होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे अगर आपको गाय का पेट इस वक्त दिखाएं, क्या आपकी किचन में काम करने की मशीन होगी, प्रोसेसर। इधर से आप गाजर डालते हैं, यहाँ जाती है, आखिर में कट के आती है ना। गाय के पेट में 4 हिस्से होते हैं। आप ये जो गाय खाती है ना चारा, ये पहले एक पेट में जाता है, फिर वहाँ जाके इसको वो प्रोसेस करती है, जो जुगाली करती है, पहले जल्दी जल्दी खा लेती है सारा। इसका पेट एक सिर्फ स्टोरेज टैंक होता है, उसको डर है कि दूसरी ना खा जाए मेरा, फिर खा के फिर आके बैठ जाती है। फिर वो एक स्टमक का वापस दोबारा उसके मुंह में आता है बार बार, थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको जुगाली करती है, फिर जुगाली करके वो एक और दूसरी पाइप के जरिए दूसरे पेट में जाता है, फिर वहाँ से निकल के तीसरे में फिर इसका गोबर जमा होता है, और चौथे में जाके दूध बनता है। فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم تو ایک گائے پہ غور کریں تو اس کو پالیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا, اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا یعنی جانوروں پر, وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. تو جانوروں کے کتنے فائدے ملے, دودھ پلاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں ہم ان کا, ان کے سینگوں سے چھریاں چاقو ان کے دستے بنتے ہیں, کھال سے لباس بنتے ہیں, اور جانوروں کو سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. تو جو ذات اتنا کچھ کرتی ہے, بتاؤ کہ پھر کیا تم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں ہو؟ تمہیں اس کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ وہ کہتا قد افلح المومنون, تو پھر تم کیوں ایمان لاتے ہوئے ڈرتے ہو, خوف کیوں کھاتے ہو؟ حقیقت ہے کہ بعض لوگ ایمان کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پابندیاں لگ جائیں گی, زندگی میں بہت ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی, انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ایک جانور سے تمہیں اتنا صاف میٹھا دودھ پلا سکتا ہے, اس کے بعد تمہیں پیاس نہیں لگتی, تو کیا تم اللہ کے دین سے اپنا تعلق جوڑ کے پیاسے رہو گے؟ غور کیا کرو, لفظ عبرت پہ آپ جتنا سوچیں گے آپ کا ذہن کھلے گا. اور ڈکشنری میں عبرت کہتے ہیں مشاہد کی معرفت سے غیر مشاہد تک پہنچنا. کیا مطلب؟ کہ جس نے دیکھا ہوا ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے جس نے نہیں دیکھا. غور و فکر یہی ہوتا ہے نا. اس پورے سبق کا جو مین تھیم تھا وہ شروع میں گزر گیا, آخری آیتیں تو صرف اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تھی نا. یہ بھی آپ اب نوٹ کریں گے, صورتوں میں ایسے ہی ہوتا جائے گا کہ پورے سبق میں سے جو اصل مین تھیم ہے وہ آپ کو شروع میں دے دیا جائے گا, اور باقی آیتیں صرف غور اور فکر کی ہیں. اسی لیے ہم نے آخری حصے کو جلدی میں کیا. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے, عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.